शांति। हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा की अति लाडले सिकिलदे मीठे प्यारे बच्चे बाबा की गोद में बैठे हैं। हमारी उम्र जब 6 वर्ष की थी 53 में दिल्ली कमला नगर में एक सेवा केंद्र खुला था, उस समय बाबा से मिलना हुआ। जब पहला दिन सेवा केंद्र पर आए, सफेद वस्त्रधारी बहनों को देखा तो इतना आकर्षण खिंचाव हुआ कि ऐसा अनुभव हुआ कि आज बहुत सुख मिला। दुख तो था नहीं, लेकिन एक विशेष सुख की अनुभूति हुई। और हमारी लौकिक माताजी को कोर्स दूसरे कमरे में कराने के लिए कोई दादी करा रही थी और एक बहन क्लासरूम में हमें ले गई कि बच्ची है, थोड़ा इसको बिजी करें। तो उसने हमसे पूछा, गीत सुनोगी? सुनेंगे। तो उसने एक गीत, उन दिनों ग्रामोफोन होते थे चाबी वाले, एक गीत लगाया। वो गीत बजा, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, पूरा गीत सुनाया। फिर कहा, दोबारा सुनेंगी? फिर दोबारा सुनाया, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। फिर उस बहन ने कहा, इस गीत पर मैं तुमको डांस करना सिखाऊं? सिखाइए। फिर इसी गीत को बजाकर उससे मुझे डांस करना सिखाया और कहा, रोज आना, तुमको डांस करना सिखाएंगे। तो ये पहले दिन का पाठ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, इसका जादू लग गया। और थोड़े ही समय के बाद हम माउंट आबू आए, तब कोटा हाउस में बाबा रहते थे, ये पांडव भवन नहीं था। जब बाबा से मिले, बाबा और मम्मा सामने आए बैठे, तो बाबा को देखने से ही एक ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान विष्णु को देख रहे हैं। भक्ति मार्ग में भगवान विष्णु, सबसे बड़ा विष्णु को मानते हैं। बाबा का स्वरूप विष्णु रूप दिखाई दिया, बहुत भव्य, बहुत आकर्षण करने वाला। और अंदर में एक भावना जगी कि बस ये बाबा को नहीं छोड़ेंगे, इस बाबा के होके रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति कि ये बाबा मेरा बाबा है और ये बाबा कह रहा है तुम मेरी बच्ची हो, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। इससे बड़ी प्राप्ति तो कुछ चाहिए ही नहीं। और बाबा ने जब अपनी गोद में बिठाया और पहला महावाक्य यही उच्चारण किया कि ये बच्ची यज्ञ से गई है और फिर यज्ञ में आई है, तो वो बाबा का वरदान आज तक साथ रहा। छोटी उम्र में जो टचिंग हुई, कई समझते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं तो नशा उतर जाता है, कई अपना अनुभव सुनाते हैं ज्ञान में आए थे बहुत नशा चढ़ा, धीरे धीरे वो नशा उतरता गया घटता गया, लेकिन हमारा अनुभव क्या है, हमारा नशा बढ़ता गया बढ़ता गया। कभी मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि ब्रह्मा कुमारी बने या ना बने, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, कभी ये प्रश्न उठा ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी तो मैं हुई, बनना थोड़े ही, वो तो हुई, बाबा को देखा पहले दिन बाबा की बन गई, अब लक्ष्य तक पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना, ऊंचे पद तक पहुंचाना, अब वो तो बाबा का काम। बाबा कहता है बच्चे तुम सिर्फ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं, जैसे एक मेकअप मास्टर के सामने एक एक्टर बैठ जाता है, उसका जो पार्ट है वैसा उसका उस चेहरे पर मेकअप करता है। हम बच्चे अमृत वेले बाबा के सामने आके बैठ जाते हैं ना, हमारे नैनों में रूहानियत, हमारी बुद्धि में दिव्यता, हमारी वाणी में मिठास, हमारे संकल्पों में बल बाबा भरता है, वो हमारा मेकअप कर रहा है। हमको एकाग्र होके बैठना है, एक बाबा दूसरा नहीं कोई। कईयों को ये मंजिल कठिन लगती है, मेहनत करना पड़ता है, मुश्किल लगता है, लेकिन हमने अनुभव किया एक श्रीमत का हाथ पकड़ा है, एक श्रीमत का साथ पकड़ा है, तो भटकने का रास्ता ही नहीं, एक की मत पर चल रहे हैं, आसानी से यहां तक आए। मुश्किल किसको लगता है जो कभी मन मत पर चलते, कभी पर मत पर चलते, कभी माया की मत पर चलते, भटक जाते, फिर रास्ते पर आते हैं तो मुश्किल लगता है। कदम कदम जो बाबा ने मत दी है, जो नियम दिए हैं, जो मर्यादाएं दी हैं, सत्यता से उसका पालन करना, फिर ये रास्ता बहुत सहज है, बहुत सरल है, कभी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। अगर कभी कोई परिस्थिति आई भी तो पार उतारने वाला भी तो हमारे साथ है ना, मेरे सामने नहीं आई, वो बाबा के ही सामने आई है। मुझे किसी परिस्थिति के रास्ते से वो ले जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैं घबरा जाऊं, इसलिए नहीं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, वो मुझे अनुभवी बना रहा है। मुझे अनुभवी बनाने के लिए कभी कभी किसी कठिन रास्ते से भी ले गया है। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं ईश्वर का रास्ता बहुत कठिन है, कांटों से भरा हुआ है। इसलिए नहीं कांटों से भरा है कि उस पर हम चल न सकें, हमारी मजबूती हमारी दृढ़ता की परख तो होनी चाहिए ना। कोई कठिनाई आती है, हमारे अंदर जो शक्ति है वो प्रकट होती है। मम्मा की पालना, बाबा की पालना लेने का बहुत अवसर मिला। कल से तो हम लोग दादी को बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद आया, मुझे भी एक अवसर मिला दादी के साथ रहने का। एक वर्ष मैं दादी के साथ बॉम्बे में रही। बाबा ने मुझे आबू में पूछा, बच्ची तुमने बम्बई देखी है? क्या नहीं देखी? अच्छा जाओ, बाबा दादी को लिख देता है, तुमको खूब घुमाएगी, बॉम्बे घूम कर आना। और अचानक ही एक दादी जा रही थी, उनके साथ मुझे बॉम्बे भेज दिया। दादी ने मुझे हर सेंटर पर भेजा और बॉम्बई के जितने भी दर्शनीय स्थान है वो भी देखने के लिए भेजा। लेकिन मेरा एक संस्कार था जो बाबा का वरदान था, घूमने का शौक नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा दिया था बाबा ने। ज्ञान जब समझ में आ जाता है, जब हमारे अंदर समा जाता है, तो हमारी वृत्ति वैराग वृत्ति बन जाती है, नेचुरल वैराग। और जितना जितना वैराग हमारे जीवन में आता है, इतना इतना ज्ञान समझ में आता है। बिना वैराग के ज्ञान समझ में नहीं आता, धारण नहीं होता। तो ज्ञान का वैराग से संबंध है और वैराग का ज्ञान से संबंध है। एक नेचुरल वृत्ति बन गई थी वैराग वृत्ति। दादी हर जगह घूमने भेजती थी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं घूमने में, तो भी मैं जाती थी और याद रखती थी कि सृष्टि का मालिक मुझे खुद अपनी दुनिया दिखा रहा है, मैं उनके साथ खड़ी होकर देख रही हूं एक साक्षी भाव से। तो वहां जो मैं एक वर्ष दादी के साथ रही, एक दिन की बात आपको सुनाती हूं। दादी को बहुत सिर में दर्द था, लेटी हुई थी और मैं दादी के सिर पे बाम लगा रही थी। कोई नहीं था कमरे में, बिल्कुल साइलेंस था। अचानक दादी बोली, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी की आंखें बंद थी। देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी बाबा को देखने लगी। फिर थोड़े समय के बाद फिर दादी बोली, सारे दिन में कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि बाबा मेरी आंखों के सामने ना हो। फिर मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? तो दादी को अच्छा नहीं लगा। दादी को लगा अभी ये बहुत बच्ची है। फिर दादी ने जवाब दिया, दोनों इकट्ठे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगा कि बाप दादा दोनों दादी की आंख के सामने सारा दिन रहते हैं। कोई टाइम ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरी आंख के सामने ना हो। तो दादी की ये महावाक्य मेरे अंदर बैठ गए। मुझे लगा जब दादी सारा दिन बाबा को देखती रहती है, मैं भी बाबा को देखूंगी। कितना नेचुरल तपस्या थी दादी की, कितना नेचुरल योग था दादी का। सिर दर्द की स्थिति में भी वो बाबा को देख रही थी और बाबा से बात कर रही थी। ऐसी निरंतर याद, ऐसा निरंतर योग। उसके बाद बहुत समय तक मैं सारा दिन बाबा को देखने का अभ्यास करती रही, सारा दिन अभ्यास करती रही बाबा को देखने का। वो दादी के जो अनुभवी बोल थे, उसने मुझको एक वरदान दिया और मुझे कभी भी किसी भी बात में कठिनाई अनुभव नहीं हुई, मुश्किल अनुभव नहीं हुई, न किसी के साथ रहने में, न किसी के स्वभाव में। अपना भी शो करने की नेचर नहीं रही, मुझे तो दादी जैसा त्याग, दादी जैसी तपस्या, दादी जैसी साधना जो नेचुरल उनकी लाइफ में थी, लगता नहीं था कोई पुरुषार्थ कर रहा है। एक दिन मैंने पूछा कि दादी लगता नहीं है कि आप कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कहा हाँ, बाबा ने हमारी नेचुरल लाइफ बना दी है। जो औरों को पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगता है, हमारी नेचुरल लाइफ बन गई। ईश्वरी मर्यादाएं नियम सिखाने के लिए एक दिन का अभ्यास चाहिए, एक दिन का अभ्यास चाहिए। अमृत वेले दादी 2 बजे उठती थी, हमको तो बाबा कहता है 3:30 बजे उठो, लेकिन बाबा खुद 2 बजे से बैठते थे, मम्मा 2 बजे से बैठती थी, दादी कहती है 2 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती। एक बार दादी ने अपना अनुभव सुनाया, कहा रात्रि 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बाबा आया है, मेरे पास आके बैठा है और मुझे कई डायरेक्शन दे रहा है, कई डायरेक्शन दे रहा है। तो कितना बाबा के साथ उनका लिंक जुटा हुआ था। तो दादी ने बताया कि अभ्यास हो गया, अमृत वेले 2 बजे 3 बजे उठने का अभ्यास हो गया। तो जिसको अभ्यास हो गया उसको मेहनत नहीं लगती, 3 बजे अपने आप नींद खुलती है। तैयार होते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, रू रूहान करते हैं, पावर लेते हैं, उसके बाद स्नान करके समय पर क्लास में आते हैं। मुरली सुने बिना रह ही नहीं सकते, और जिन्हें मुरली सुनाने का अभ्यास हो गया वो मुरली सुनाए बिना रह नहीं सकते। मुरली में जो आनंद, जो पावर, जो शक्ति, जो श्रीमत हमें मिल रही है, रोज हमको कितना रिफ्रेश कर रही है, कितना बड़ा साथी है हमारा। बाबा ने मुरली के द्वारा अपना कितना साथ दिया है। और ये भी कहा है, बच्चे तो मुरली का मनन चिंतन करके, मुरली को धारण करके फिर मुरली सुनाओ। भक्ति मार्ग में भी मुरली की बड़ी महिमा है। गोपियों को ईर्ष्या होती थी कि हमें कृष्ण से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, लेकिन हमसे ज्यादा कृष्ण को प्रेम मुरली से है, क्योंकि हर टाइम मुरली उनके हाथ में रहती है और उनके मुख से लगी रहती है। तो गोपियों को बड़ी ईर्ष्या हुई और मुरली से पूछा कि तुमने क्या साधना की, तुम इतना उनके नजदीक रहती हो, इतनी भगवान के नजदीक रहती हो। तो मुरली के अंदर एक बड़ी विशेषता है। तो मुरली की एक आत्मकथा है, मुरली कहती है कि मुरली बांस से बनती है, हाँ? अंदर से बिल्कुल खाली, अगर उसके अंदर कुछ भी हो तो सुर नहीं निकल सकता। बाबा कहते हैं अगर मुरलीधर बनना है, मुरलीधर के बहुत प्यारे बच्चे बनना है, तो क्या करो, अपने अंदर से सारा अहम निकाल दो, मैं पर, मेरा गुण, मेरी विशेषता, मेरी योग्यता, अपना अहंकार, अपना अहम अंदर से बिल्कुल निकल जाए, खाली हो जाए, तो मुरलीधर अपने अपने उसके द्वारा सृष्टि के अनेक राज समझाएगा। आज बाबा के अनेक बच्चे ऐसी मुरली बन गए हैं जिनके द्वारा मुरलीधर मुरली बजाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का अहंकार मिटा दिया, अहम मिटा दिया, मैं कुछ करता हूं, कर्तापन मिटा दिया, करण करावन हार करवा रहा है। ऐसे अपने अहम को मिटाकर बाबा की महावाक्य मेरे द्वारा उच्चारण हो इसकी योग्यता अपने अंदर लाएं। तो जब हमने मुरली सुनने और सुनाने की एक संस्कार बन गया, तो इसमें हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। कि कर्म करते बाबा की याद में रहकर कर्म करें और अपने ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अनुसार कर्म करें। उसका भी जब अभ्यास हो जाता है तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते, श्रीमत से बाहर नहीं जा सकते। शाम का समय भी बाबा की याद में, सेवा में बिताते हैं। रात्रि सोने के समय भी अपना चार्ट चेक करते हैं, अपना कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं, रोजाना चेक करते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, कितना किसी को सुख दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया। कितनी अच्छी बात दादी कहती है, कौन क्या करता है, क्यों सोचते हो, मुझे क्या करना है वो करो। क्यों चिंतन चलता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। दूसरे के कर्मों का फल हम बहुत भोगते हैं। झूठ दूसरा बोलता है, दुखी हम होते हैं। चोरी दूसरा करता है, दुखी हम होते हैं। जैसे कि उसके कर्मों का बोझ अपने ऊपर रख लेते हैं। जिसका कर्म है उसके साथ, आपको जो करना है वो करो, अपना पार्ट अच्छी तरह बजाओ, स्व चिंतन में रहो, स्व परिवर्तन करो। देखो परिवर्तन में कितनी मेहनत लगती है। जब मुझे मेहनत लगती है तो दूसरे को भी लगती होगी, ये बात ध्यान में रखो। तो हमें सोचना सिखाया बाबा ने, कितना अच्छा श्रेष्ठ चिंतन, कितना शुभ चिंतन, सबको सुख देने के लिए एक बहुत अच्छी विधि सिखाई है। कैसे मेरे द्वारा सबको सुख मिले, बाबा ने सुख का रास्ता दिखाया। कहा, बच्चे जब तुम किसी का गुण देखते हो उसको आपकी दृष्टि से भी सुख मिलता है, जब आप किसी का अवगुण देखते हो उसको आपसे दुख मिलता है। आपने बोला कुछ भी नहीं, आपने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन हम किसी का अवगुण देखते हैं, कमी देखते हैं, तो उसको आपसे दुख मिलता है। गुण देखते हैं तो सुख मिलता है। अगर सुखदाता बनना है तो सबके गुण देखो, केवल देखो ही नहीं, गुण गाओ भी, उसके सामने भी बोलो आप में ये बहुत बड़ा गुण है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम महावीर हो, तुम ज्ञान गंगा हो, तुम बाबा का सच्चा सच्चा वारिस हो, शिव शक्ति हो। बाबा हमारे गुण सामने बोलते हैं ना। कोई विशेष दिन आता है तो आजकल कार्ड, वरदान के कार्ड छपे हुए यहां मिलते हैं, हम ले जाते हैं ना। कोई विशेष दिन आता है तो सबको वरदान दे देते हैं ना। कभी ऐसा भी अभ्यास करें कि वो वरदान मेरे मुख से निकले। मुख से तब निकलेगा जब मन में स्टॉक इकट्ठा किया होगा। अगर बुद्धि में स्टॉक इकट्ठा नहीं होगा तो मुख से वरदान निकलेगा नहीं। हमारी नैनों में वो वरदान की भावना नहीं आएगी, हमारी वाणी में वो वरदान निकलेगा नहीं। जब हमारे मुख से वरदान निकलेगा तब हम दूसरे को सुख पहुंचा सकेंगे। तो बाबा ने ऐसी शक्ति दी, ऐसी विधि सिखाई, ऐसी पावर दी जिससे हमारा पुरुषार्थ सहज हो गया। फिर भी अपने अंदर जो भी कमी है उसको अगर मिटाने का लक्ष्य रखते हैं, यहां आए भट्टी में आए हैं ना, भट्टी में आए हैं तो अपने अंदर मजबूती लाने के लिए आए हैं। मजबूती लाने में एक दिन की दिनचर्या को पक्का कर लें। हमारी सारी लाइफ एक दिन की दिनचर्या को रिपीट करते हैं ना। जिस टाइम अमृत वेले उठते हैं रोज उसी टाइम उठते हैं, क्लास में जिस टाइम जाते हैं रोज उसी टाइम जाते हैं, टाइम पर आने वाले टाइम पर पहुंचते हैं, लेट आने वाले लेट पहुंचते हैं, ऐसा होता है ना। एक दिन की दिनचर्या हम पूरी जीवन रिपीट करते हैं, तो एक दिन की दिनचर्या को हम एक्यूरेट कर ले। आज मेरा अमृत वेले समय पर उठे, समय पर योग किया, आज क्लास में समय पर पहुंचे, आज मुरली बहुत ध्यान से सुनी, आज मुरली की कम से कम 10 पॉइंट तो याद रही, वरदान याद रहा, स्लोगन याद रहा, रिवाइज किया, फिर किसी एक को सुनाया, जबानी पढ़ के नहीं, फिर दूसरे को सुनाया, तीसरे को सुनाया, चौथे को सुनाया, दिन में किसी को खास बिठाकर भी सुनाया, तो ये हमारा संस्कार बन गया। कर्म करते बाबा को कैसे याद करते रहे, व्यवहार में भी सबको सुख देने का लक्ष्य रहा, सबको संतुष्ट करने का लक्ष्य रहा, बाबा का संदेश कोई ना कोई आत्मा को जरूर देना है ये लक्ष्य रहा। एक दिन की दिनचर्या एक्यूरेट बिता ले तो क्या होगा, हमें जीवन ब्राह्मण कुल में ईश्वरीय जीवन जीने की कला आ जाएगी। केवल एक दिन की तपस्या करें, रोज सिर्फ देखें आज मेरा ठीक एक्यूरेट बीते, सुबह से रात्रि तक हर संकल्प शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प कल्याणकारी संकल्प हर एक के लिए रहे। दो तीन दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे ज्ञान की धारणा किसको होगी, जिसकी व्यापारी बुद्धि होगी वो ज्ञान को अच्छी तरह समझेगा। क्यों कहा, व्यापारी बुद्धि का मतलब क्या है, व्यापारी प्रॉफिट को पहचानता है, इतना प्रॉफिट होगा वो काम जरूर करेगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा तो भी करेगा, प्रॉफिट होगा उसको छोड़ेगा नहीं, लॉस का धंधा नहीं करेगा, लॉस का कोई धंधा ही नहीं होता है, घाटे का व्यापारी नहीं होता है, व्यापार में तो लाभ है। जिसको ये समझ में आएगा 21 जन्म बाबा हमें राजाओं का राजा बनाता है, इतना बड़ा प्रॉफिट जिसकी समझ में आ जाएगा उसकी बुद्धि बन जाएगी विशाल बुद्धि, निश्चय बुद्धि, दूरादेश बुद्धि, कितने बुद्धि के नाम दिए, और एक वंडरफुल नाम मिल गया व्यापारी बुद्धि। फिर बाबा ने कहा जमा का खाता देखो, जमा किसका होगा, जिसको इतनी कमाई होगी अपना खाना पीना खर्चा निकाल के कुछ दूसरे को भी जरूरत है उसको दे के बचेगा तब तो जमा होगा, ठीक है, पहले अपना खर्चा निकले, फिर अपने परिवार में किसी को जरूरत है उसको भी देना पड़ता है, उसके बाद भी बचत हो तब तो जमा होगा ना। अब ज्ञान और योग से हमारी इतनी कमाई हो रही है कि हमारी अपनी अवस्था ही ठीक नहीं रहती, हम डिस्टर्ब होते हैं, मूंज जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक रस नहीं रहते, माना इतनी कमाई नहीं है कि अपना खर्चा चल सके, हम एक्यूरेट चल रहे हैं, अचल अडोल निर्विघन, माना हमारी अच्छी कमाई है, ज्ञान योग के बल से ही तो अच्छा चलते हैं, कि दूसरे की अवस्था का उतार चढ़ाव है उसको भी ठीक करने में खर्चा करें, इसके बाद भी हमारी कमाई ज्यादा हो तब जमा हो। इसलिए बाबा ने कहा जो व्यापारी होगा वो हिसाब निकालता, इतना खर्च है उसके बाद कितना बचा, कितना जमा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो व्यापारी अपना हिसाब निकालता रहता है। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा नाम दिया, बहुत मेरे को पसंद आया, कि बच्चों की बुद्धि कैसी चाहिए, व्यापारी बुद्धि चाहिए, जो प्रॉफिट को देखे, प्रॉफिट को समझे, ज्यादा कमाई करने का लक्ष्य रखे, अपना खर्चा अच्छी तरह से चला सके, दूसरों को अच्छी मदद कर सके, उसके बाद भी जमा कर सके, इतनी हमारी कमाई जमा हो, तो देखो बाबा हमें कितनी भिन्न भिन्न युक्तियों से, कितनी भिन्न भिन्न तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो दादी के इस स्मृति दिवस पर हम सभी को ये संकल्प जरूर लेना है कि दादी जैसा एक रस अवस्था धारण करनी है, दादी जैसा अचल अडोल रहना है। हाँ, ऐसा नहीं समझना दादी के आगे कोई परिस्थिति ही नहीं आती थी, जो आगे है सब कुछ उसके सामने आएगा, तब तो उसे अपनी सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो भी कितनी मधुरता की मूरत, कितने बच्चे गलती करते, कितने बच्चे बात नहीं मानते, जितनी समस्याएं सबके सामने आती है उतनी उससे ज्यादा दादी के सामने आती थी। कैसे उन्हें क्षमा करती, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती, फिर से उनका सहारा बनती, फिर से उनको आगे बढ़ाती, दिल में शुभ भावना कभी नहीं छोड़ती, कितनों के जीवन का आधार बनी, कितनों को आगे बढ़ाया, एक एक को याद है कैसे दादी ने हमको आगे बढ़ाया। तो आज ऐसा संकल्प लेना है कि इस स्मृति दिवस पर हम सदा दादी को याद रखते हुए अपनी अवस्था को भी निरंतर बाबा को याद करने वाली, निरंतर अचल और अडोल रहने वाली, एक रस रहने वाली स्थिति बनाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।